ओम शांति। तो यहाँ पर हम सब कई प्रकार की सीरीज के एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं, तो आज का जो टॉपिक है कि अभिमान को कैसे सहन करें, आर्ट ऑफ टॉलरेंस के अंतर्गत। तो अभिमान ही अपमान हम सबको कितना दुखी करता है, और अभिमान की निशानी बाबा ने बोला है अपमान। तो अपमान से कैसे हम फेस करें और अपमान को हम कैसे पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं और अपने जीवन को सुखी कैसे बना सकते हैं, क्योंकि ये सारी बातें तो हमारे जीवन में हर दिन घटना के रूप में घटित होता है और हम सब इसके चपेट में आते रहते हैं। सारे दिन भर में कहीं न कहीं ये सभी बातें हमारे जीवन में होती है। सबके रूप अलग होते हुए भी बातें एक ही बनती है लास्ट में जाकर के। इसलिए विभाग के हिसाब से, कर्म क्षेत्र के हिसाब से किसी को किस रूप से आती है, किसी को किस रूप से आती है, बातें होती रहती है। इसीलिए हम सबको अपमान सबसे बड़ा बीमारी है और ये वायरस के तरह ही अंदर में हम सबको खोखला कर देता है, जम्स की तरह अंदर में जैसे कि फैलती रहती है और ब्लड को उबलता रहता है उसको और हम सब जलता है। तो इसके कारण से संसार में अगर देखा जाए कि अपमान ने क्या किया है, पूरे रामायण को अगर देखा जाए, महाभारत को देखा जाए, तो और बहुत सारे शास्त्रों में इसकी दृष्टांत तो मिलता है कि ये सभी बातें तो है, तो संगम एक युकाई है, लेकिन उस सब उस चीज में वर्णन किया गया है। तो हम सब जानते हैं कि हमारे जीवन में भी इस प्रकार की कई ऐसी घटनाएं घटित हुई है जो अभी तक भी भूल नहीं पाए हम सब ने। तो अभी ब्राह्मण बनने के बाद में उसको डिलीट करना सहज हो रहा है और हम सब जितना ज्ञान के मास्टर बनते जाते हैं, समझदार बन जाते हैं, ज्ञानी तो आत्मा बनते हैं। तो इसके कारण से अभी हम सबको कोई भी बड़ी बातें बड़ी नहीं लगता है, छोटी छोटी बातें लगने लगती है। इसीलिए जैसे जैसे हमारी मजबूती आती जाएगी अपने जीवन में, उतना ही हम शक्तिशाली बनते जाएंगे। तो अपमान को फिर हम सम्मान में कन्वर्ट करते हैं और हम सबको जैसे कि ये छोटी सी बात है, तो छोटी सी बातें बनाने के लिए बड़ी तपस्या करनी पड़ती है और साधना भी करना पड़ता है। ऐसे हल्के रूप से इसको चबा लिया जाए, इसको हल्के रूप से पचाने की ताकत नहीं होती है, इसीलिए साधना ही हम सब इसके लिए ही करते हैं। तो इसीलिए अपमान हम सभी आत्माओं के जैसे कि रग रग में समाई हुई थी, नस नस में थी, रग रग में थी वो, और इसका जो वाइब्रेशन बनता है वो वातावरण में, वायुमंडल में, माहौल में ये रहता ही है, और ये कहीं ना कहीं किसी के ऊपर कभी भी हावी हो जाता है। तो इसीलिए हम जानते हैं कि यह अपमान हम कैसे सम्मान में बदल सकते हैं और अपमान कहाँ कहाँ से जागृत होता है और अपमान आने का रास्ता क्या है। अपमान आने के कई सारे दरवाजे हैं, उसके वेंटिलेशन है, छोटी छोटी सुराग हैं जहाँ से घुस जाती है और हम सबको लुहल्यान करती है। तो इसीलिए हम जानते हैं कि अपमान कहाँ से जन्म लेता है। तो अपमान का आने का रास्ता हमने समझा है कि अपमान क्यों होता है हम सबको, तो कई सारे कारण निकाले गए थे। तो उसमें सबसे पहला है कि सम्मान न मिलने से अपमान की फीलिंग होती है। यथार्थ जगह पर, सही समय पर, इन मौके पर हम उस व्यक्ति को कैसे सम्मान देना चाहिए, और सम्मान देने वालों ने सम्मान दिया, लेने वालों ने उस रूप से नहीं लिया, उसमें भी हमको अपमान की फीलिंग होती है। इसीलिए अपमान आने का जो रास्ता है, नाम मान शान को हमने पाल के रखा है, तो उसी भाव से, उसी भावना से हम कहीं न कहीं इस चीज को मांगते रहते हैं। तो इस चीज को मांगते हैं लेकिन वो मिलता नहीं है, तो उस समय हमको अपमान की फीलिंग होती है कि इन्होंने मुझे जिस तरीके से रिगार्ड देना चाहिए था, सम्मान देना चाहिए था, नहीं दिए। इन्होंने हमको हमको क्या समझ के रखा है, हमने तो इस हिसाब से अपने को मानते हैं। इसीलिए नाम मान शान के रूप से भी अपमान की फीलिंग होती है। तो उसके बाद में जैसे कि हम सब की जो पद पोजीशन है, जो स्टेटस है, वो भी हम लोग ने सबने अपने जीवन में कई सारी साधना कितने मेहनत करके प्राप्त किया हुआ है। तो एक राजनेता कोई बनता है तो करोड़ों की तादाद में दौलत की व्यय करता है, उसके बाद में जीवन लगा देता है, खपा देता है। तो ऐसे इसी स्थिति में भी हम सबको लगता है कि इस चीज़ का सम्मान होने चाहिए। पोजीशन, स्टेटस, वो भी हम सबको अपमान के कारण बन रहा है कलयुग में। इसलिए संगम युग में जब यही चीज़ें लेकर के हम बाबा के घर में एंट्री करते हैं तो वो चीज़ें मन्नत मन में रहता है, तमन्नाएं रहती है, और उसी को हमने पाल के रखे होते हैं। तो थोड़ा सा हम सब मानते हैं कि ये चीज़ें हम सबको सबके तरफ से होने चाहिए। बाबा ने तो कहा है कि जब तक इस सब चीज़ों को नहीं भूलेंगे तब तक वो चीज़ें हमको नहीं मिलता है जो बाबा देने चाहता है। तो एक भाई बता रहे थे कि बहुत प्रोफेसर जो भाई थे रिटायर होकर के यहाँ सेवा करने आए थे, तो उनको लगता था कि मैं प्रोफेसर हूँ। तो एक भाई ने उनको अच्छी क्लास कराई, जब तक तुम ये प्रोफेसर हो इस स्मृति में रहोगे तब तक आध्यात्मिकता का जो सुख है, जो खुशी है, और जो यहाँ पर लेने आए हो वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि उसको तुम्हें सबसे पहले भूलना पड़ेगा। तो बाबा हम सबको भी यही शिक्षा देते हैं, पहले पुरानी जन्म के पुराने संस्कार, पुरानी आदतें, पुरानी थिंकिंग और पुरानी जो पद पोजीशन, जो स्टेटस है, उसको जब तक हम भूलते नहीं हैं तब तक उस चीज़ से हम भरपूर नहीं हो सकते। तो इसीलिए जब तक हम इस चीज़ को पूर्ण रूपेण तिलांजलि नहीं देंगे तब तक बाबा की ये सारी चीज़ें हमारे जीवन में नहीं आएगी। इसीलिए हम सब जानते हैं कि कहीं न कहीं जो परमात्मा शक्ति, परमात्मा ऊर्जा के जो रुकावट है वो हमारे ही संकल्प है। बाबा ने तो किसी को पक्षपात किया ही नहीं, ये पुराना, ये नया, ये छोटा, ये बड़ा, ये इस प्रकार का व्यक्ति बोल के बाबा ने तो सबको उसी नज़र से देख करके प्यार किया है। लेकिन हम सब ने उस ऊर्जा को अंदर जाने न देने के लिए हम ही बाधक बने हुए हैं, हम सब ही उसके निमित्त बने हैं। और दूसरों को हम ब्लेम करते हैं, क्लेम लगाते हैं कि इसके कारण से ऐसा हुआ, इसके कारण से ये नहीं हो पा रहा है, स्थिति नहीं बन पा रही है। ये सभी चीज़ें हम अपने मन से जब तक नहीं मिटाएंगे तब तक इसका अनुभव हमको नहीं होगा। तो आगे है कि जैसे कि जाति, धर्म और कुल, इसके माध्यम से भी हम सबको अपमान की फीलिंग समय प्रति समय होती रहती है। और जो जाति, जो धर्म और जो कुल है वो मनुष्य को अंदर में ऐसा घर करके बैठा हुआ है, घर करके बैठ जाता है। उसके खिलाफ में कोई बोलता है, कुछ सुनने को मिलता है तो उसके लिए लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, और ये एक संघर्ष का कारण बन जाता है, द्वंद्व का कारण बन जाता है, और जो हंगामा के कारण बन जाता है। आज दुनिया में जो भी सारी चीज़ें लड़ाई हुई है, आज धर्म के नाम पर ही हुई है। संसार में सबसे ज़्यादा लड़ाई धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, कुल के नाम पर हुई है। और इसके खिलाफ में कोई भी जाता है तो कंसर्वेटिव जो थिंकिंग वाले लोग होते हैं इसके अगेंस्ट में आ जाते हैं। तो इसीलिए हम सब आज बाबा ने तो विश्व ब्रह्मांड की सभी आत्माओं को एक सूत्र में जोड़ा है और सबको एक सूत्र में जोड़ रहे हैं। तो इसीलिए तो बाबा बोलते हैं कि न विदेश का कल्चर है, न भारत का कल्चर है, ये सब ब्राह्मण कल्चर, ब्राह्मण संस्कार में हम सबको बाबा ने एक सूत्र में बांधा है। तो इसीलिए इसके माध्यम से भी जो हमारे मन में बातें आती है तो उसके ऊपर भी हम सबको जब तक हम चेक नहीं करेंगे तब तक चेंज नहीं कर सकेंगे। कुछ न कुछ बातें अंदर में समाई हुई है, और थोड़ी सी भी कुछ बोल देते हैं तो उसको बहुत अच्छा नहीं लगता है, और जब हम अपमान फीलिंग करते हैं तो बदला की भावना जागृत होती है। हाँ, तो बदला की भावना आता है, और कभी भी मौका मिलने पर हम उसको सबक सिखाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इसीलिए इसके तरफ से भी हम जो बातें आएगी तो इसको भी हमें पूरा नील करना पड़ेगा, पूरे डिलीट करनी पड़ेगी, फिनिश करना पड़ेगा। तो उसके बाद में आगे है कि जो मान्यता और जो सिद्धांत जो बने हुए हैं संसार में, हर व्यक्ति के जीवन में इस प्रकार की चीजें होती है। मान्यता भी हमने बना के रखा है, मान के रखा है, सिद्धांत जो हमने ठान के रखा है, तो ये भी चीजें हम सबके जीवन में कभी न कभी दुखी करता है। और जो चीजें मान के रखते हैं तो उसके खिलाफ में कोई बातें होता है, कोई बातें होती है, और कोई बातें लोगों के मुख से, व्यवहार से, वचन से दिखता है, तो हमें बहुत अच्छा नहीं लगता है। सिद्धांत के खिलाफ में जाएंगे तो पूरे राष्ट्र से लेकर के, है ना, कानून कायदे और जाति धर्म के साथ एक साथ ऐसी घटनाएं घटित होती है। तो इसीलिए जो सिद्धांत है, मान्यता है, उस सभी चीजों को भी हमें भूलना पड़ेगा। और जो चीजें हमारे जीवन में बार बार होती है तो उसके द्वारा भी हमें सबक सीखने को मिलता है कि इस सब चीजों से ऊपर उठना ही होगा। तो इसके बाद में जो भाषा और संस्कृति के माध्यम से भी हमारे जीवन में ये सारी बातें होती है। जो भाषा किसी को अच्छा नहीं लगता है, किसी को बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता है, और किसी को वही भाषा के लिए लोग संघर्ष करते हैं, ये भाषा ये पूरे देश में होनी चाहिए। कई सारे भाई सुना रहे थे कि यही भाषा पूरे देश में होनी चाहिए, तो उन्होंने आंदोलन छेड़ के रखे थे और वही बाबा के बच्चे बन गए। तो अभी हिंदी भाषा सबको अच्छा लगता है और बाबा की भाषा अच्छा होना चाहिए करके पुरानी सारी बातें भूल गए, नहीं तो भाषा के लिए कितनी ज्यादा लड़ाई होती है। तो इसलिए भाषा और संस्कृति भी, किसी की संस्कृति किस प्रकार की, किसी की किस प्रकार की, तो किसी की भाषा में है ना बोल होता है तो दूसरे की भाषा में गाली बन जाता है। तो कर्नाटक साइड में कुछ ऐसी भाषा है, वहाँ के लिए बहुत रॉयल लगता है, लेकिन हम लोग सुनेंगे तो पूरा अपशब्द लगता है पूरे। तो इसीलिए हम सबको ये सभी बातों को, जो बाबा ने जो मर्यादाएं सिखाए हैं और जो बातें हमको जितना होना चाहिए और जितना करना चाहिए उसी में हमको सिमट लेना चाहिए। तो इसीलिए इसके ऊपर भी हम सब देखेंगे कि कैसे ये सारी चीजें हमको दुखी न करें। तो उसके बाद में जो हम सब ने, जैसे कि अपने जीवन में कोई झूठे आरोप लगाते हैं, ब्लेम लगाते हैं, कलंक लगाते हैं, उधर से भी बहुत ज़्यादा अपमान की फीलिंग होती है। तो इसके कारण से तो कोई तो गांव से निकलते हैं, कोई पूरे डिस्ट्रिक्ट से दूर हो जाते हैं, कोई तो देश निकाला भी हो जाते हैं, देश भी छोड़ के जाते हैं, इतना तक अंदर में घर करके जाता है, अंदर में समा जाता है और समझ मिटा नहीं सकते हैं, भूल नहीं सकते, क्योंकि संसार में इतना ज़्यादा ज्ञान तो किसी के पास में नहीं है। और जो 10 साल पहले जो बातें मन में थी आज भी वही मन में रहता है। तो इसलिए मन में जो चीज़ें गढ़ जाती है तो निकालना इतना ईजी नहीं होता है। इसलिए तो झूठे क्लेम लगाने से और कलंक लगाने से भी हमको बहुत ज़्यादा अपमान की फीलिंग होती है। और जो खान पान और चाल चलन और जो व्यवहार होता है वो भी पुरानापन ही हमारे पास में होता है, तो सबके साथ एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, तो उस समय भी हमको कोई बोलता है, कोई कुछ कहता है, कुछ अपमानितपन का फीलिंग होने लगता है इससे भी। तो फिर उसके बाद में आगे है कि कोई किसी के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करता है तो भी उसको किसी को अच्छा नहीं लगता है, चाहे राजा हो चाहे रंक हो, सबके अपने अपने अपना सम्मान होता है, छोटे से लेकर के बड़े तक सबका अपना जीवन जीने की कला होती है, उनके भी अपने अस्तित्व होता है, तो छोटे को भी ये सारी चीजें अच्छी नहीं लगती। तो बड़ों के लिए भी देखा जाए तो बड़ों के लिए तो सारे लोग उनको उसकी सम्मान को जगाने के लिए, बचाने के लिए लागे रहते हैं, लेकिन छोटे के लिए कोई पिंच कर देता है, बोल देता है, तो वो भी वो सहन नहीं कर पाता है। तो इसीलिए ये सब चीज हमारे जीवन में बहुत सारी घटना के रूप से घटित होता है। तो इसीलिए हम मानते हैं कि आज भिखारी के लिए भी लगता है कि कोई सुना रहा था कि पूरे उस एरिया का वो राजा होता है, और दूसरा कोई व्यक्ति, दूसरा भिखारी उस गांव में घुस गया ना, उसको इंसल्ट फीलिंग होती है, अपमान की फीलिंग होती है। तो इस तरीके से देखिए, और तो दूसरे गली के कुत्ता भी अगर उस तीसरे गली में जाता है तो सारे इकट्ठे होकर के उसके पीछे ही कर लेते हैं। कितना भी बड़ा शेर जैसा कुत्ता क्यों ना हो, उस एरिया में उसका मान है, और उसकी गली में जब वो आता है तो जान देता है वो। तो एक भाई सुना रहे थे कि एक भिखारी बहुत दिन से उस गांव में आ ही नहीं रहा था, तो उसको लगा कि कहाँ गया, बहुत साल से हमारे मोहल्ले में गली में घूमता था लेकिन अभी क्यों नहीं आया। तो एक दिन रास्ते में मिला, तो अभी तुम क्यों इधर नहीं आ रहे हो, पहले तो बहुत बार आते रहते हफ्ता में एक बार दो बार, अभी क्यों नहीं आते हो। तो उसने बोला कि मैंने लड़की की शादी भिखारी से किया था, उस गांव को मैंने उसको दे दिया है, इसीलिए देश के रूप से दिया है उसको। तो इसीलिए मैं अभी उधर आने बंद कर दिया है। तो इस तरीके से हर जगह पर, हर स्थान पर इस चीज का बहुत बड़ा प्रकोप रहता है। तो इसीलिए हम जानते हैं, हम मानते हैं कि ये सब चीजें ब्राह्मण जीवन में भी कहीं ना कहीं संकल्प के रूप से होता ही रहता है। इसीलिए हम सब इस चीज के अपमान से कैसे बचा जाए, अपमान से बच करके अपमान को सम्मान में कैसे कन्वर्ट किया जाए, और अपमान से बच, अपमान को हम अपने जीवन के उन्नति का साधन कैसे बना सकते हैं, क्योंकि ये बातें तो हर दिन होती है, और हम निकल के भाग करके भी कहाँ जाएंगे, कहाँ तक पहुँचेंगे। इसीलिए जहाँ भी जाएंगे बातें तो होगी ही, इसीलिए जहाँ गए हमारा कर्म साथ साथ चलता है। इसीलिए हमको जहाँ है, जिधर है, जिस भी स्थान पर रहते हैं, जिस भी डिपार्टमेंट में रहते हैं, वहीं बैठ करके अपनी स्थिति और अवस्था को जमाना है, और इसको कैसे प्रगति का माध्यम बन जाए, उन्नति का साधन बना लिया जाए, उसकी क्या तैयारी चाहिए, उसके लिए कितनी परिपक्वता चाहिए, उसके लिए ज्ञान की गहराई कितनी चाहिए, इस सब बातों के ऊपर जब तक हम स्टडी नहीं करते तब तक हम इसके ऊपर जीत नहीं पा सकते। जीत पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, और वो फिर हम सबको यहाँ पर एक आपस में फूट डाल देता है, संघर्ष का माध्यम बन जाता है। परिवार में प्यार स्नेह नहीं मिलता है, जो अपमानित करने वाला व्यक्ति और अपमानित होता है वो जैसे कि अलग थलग पड़ जाता है, और वो अपने को कोसते कोसते इतना ज्यादा दुखी कर लेता है कि वो अपने को ही अपने टांग पर कुल्हाड़ी मारते रहता है, और खुद ही दुखी होता है। छोटा सा मसला मिल गया, उसके लिए पहले से भरा हुआ है अंदर में, कब कहाँ से मिलेगी थोड़ा सा, और उसको लंबा चौड़ा करके वो जीवन का हिस्सा बना लेता है, और वो निकालना बड़ा फिर बड़ी मुश्किल हो जाती है। इसलिए ब्राह्मण जीवन में भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं देखे गए हैं, और ये सारी चीजें हमारे जीवन में भी बहुत सारी घटना के रूप से घटित हुई है। और अभी बीच में एक हफ्ता पहले से ये हमको टॉपिक मिला था, लेकिन बीच बीच में और बहुत सारे कार्यक्रम होने के कारण से हमको इसमें अभी मौका मिला, तो इसमें भी बीच बीच में बहुत सारी चीजें एक्सपीरियंस की हमने कि ये घटना घटित हुई है तब तो एक हफ्ता के अंदर अंदर। तो इसीलिए हमने इसको प्रयोग भी करके देखा, तो हमने इसके लिए जैसे कि कैसे बचा जाए अपमान से, उसके लिए क्या सोचना पड़ेगा, क्या मानना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या मानेंगे इसको, ये मुझे सबक सिखाने के लिए आया है, सबक सिखाएगा ये, कुछ न कुछ हमने पहले सीखे नहीं होंगे इसीलिए फिर सिखाने के लिए आया है। तो इसीलिए हमने अगर इसको अच्छी रीति से सीखे होते तो ये दोबारा नहीं आता, तो इसीलिए जरूरी थी, मुझे इसकी आवश्यकता थी, इसीलिए ये आया है। तो इसीलिए हम ये क्या क्या मानेंगे इसको, ये सबक सिखाने के लिए आया है। दूसरा, ये हमें पाठ पढ़ाने के लिए आया है, सबक सिखाने के लिए आया है, पाठ पढ़ाने के लिए आया है, आगे बढ़ाने के लिए आया है। तो क्योंकि हम रुके हुए थे, ठंडे ठाकुर हो गए थे, कोई बोलने वाले कोई ठोकने वाले मिल ही नहीं रहे थे उधर से इधर से, तो दिमाग तभी अलर्ट होती है ना, कुछ कहीं से बातें होती है, तारीफ करने वाले होते हैं तो वह व्यक्ति ठंडा हो जाता है, कि ऐसी गाड़ी चलेगी बहुत अच्छा है बोल के स्वीकार कर लेता है, तो फिर ही बाद में क्या होता है तो ऐसे लोग मिल ही जाते हैं। और बाबा ने भी बोला है जो भी कमी कमजोरी तुम्हारे अंदर छिपी हुई है उसी के रूप से ही माया ऐसे रूप लेकर के आएगी और तुम्हें सबक सिखाएगी। तो आगे हम सब सोचेंगे कि ये नष्टमोह बनाने के लिए आया है मुझे, क्योंकि हम इतना ज्यादा इन्वॉल्व हुए हैं तो नष्टमोह का पाठ कब पढ़ेंगे। तो ये नष्टमोह कराने के लिए आया है, क्योंकि जब तक हम ये सारी चीजों में डूबे रहते हैं, फंसे रहते हैं, तो ये सारी चीजें सोचने के लिए, बुद्धि में बातें घुमाने के लिए मिलेगा ही नहीं सब चीजें। इसीलिए हम क्या मानेंगे, जो हमें नष्टमोह बनाएगा। और ऐसी परिस्थिति और जो समस्याएं जो आती है ना, वो अपने नदी वालों से ही आता है सबसे ज्यादा। जो ईद गिद होते हैं ज्यादा दूर वालों ही आकर के सीधा कोई कुछ किसी को नहीं बोल सकता है, वो अनजान है, अनजान कुछ जानता नहीं, वो डायरेक्ट आके किसी के ऊपर हमला नहीं कर सकता है। लेकिन जहाँ आसपास में हम रहते हैं, ईद गिद घूमते रहते हैं, और लौकिक दुनिया में तो सबसे ज्यादा जो कोई ज्ञान में चलते हैं, कोई नहीं चलते हैं, सब कुछ वो लोग देख रहे होते हैं। थोड़ी सी भी बातें अगर हमारे तरफ से चूक हो गई तो उसी समय वो खड़े हो जाते और वो अच्छी रीति से हमारी धुलाई कर देते। इसीलिए उस समय तो सबसे ज्यादा चौकस रहना पड़ता है हम सबको। तो इसीलिए आगे हम सोचेंगे कि हमारे लिए हिसाब किताब चुकता कराने के लिए आया है, क्योंकि जन्म जन्म का जो हिसाब किताब तो हर एक के साथ है। तो कोई शब्द के रूप से बाण मारेंगे, कोई बोल, कोई वचन, कोई कर्म, कोई आंखें दिखाते हैं, कोई दांत दिखाते हैं, व्यवहार में तो होता ही है ना। तो इसीलिए ये मेरे लिए हिसाब किताब चुकता कराने के लिए आया है। और वो तो एक बार हिसाब किताब चुकता करा के चला जाएगा, लेकिन वो मेरे अंदर में कब तक, कितना समय तक रहता है और कितना समय तक रुक गया वो चीजें, कितना देर में उसको निकाला मैंने, क्योंकि निकालना तो मुझे ही पड़ेगा। दूसरे तीसरे आके निकाल भी देंगे, सांत्वना भी देंगे, क्या वो घाव थोड़ी मिटने वाली है। जब तक हम जागृति अवस्था में ना आकर के उसको पूरा उसके ऊपर काम नहीं करेंगे ना, तब तक वो नहीं निकलेगा कभी भी। और उसको कईयों दिन लगता है, क्योंकि तुरंत निकल के नहीं जाता है, क्योंकि उसको बिगाड़ने में तो लंबा समय लगा है ना, तो बनाने में भी टाइम तो लगता है। इसीलिए जितना बिगाड़ने में हमने टाइम निकाले थे, अभी बनाने के लिए भी उतना टाइम निकालने पड़ेगा। और कई बार बीच में एक्सपेरिमेंट भी करना पड़ता है, नहीं तो एक ही बार में मिटता भी नहीं। थोड़ा सा दूसरों से ऐसी होती है बातें आएगी तो कितना कम हुआ, इस प्रकार से हमको चेकिंग भी बीच बीच में करना है। तो आगे है कि ड्रामा का पार्ट पक्का कराने के लिए आया है। ड्रामा को भूल गए थे हम सब, तो ड्रामा का पार्ट पक्का तभी होगा जब तब सब तरफ से होगा, ऐसी वार होगा और ऐसी बातें आती रहेगी, तब हमें ड्रामा याद आता है। नहीं तो फिर सारे दिन भर में अलबेले होते हैं, सुस्त ठाकुर बन जाते हैं, और बुद्धि में कोई ऐसे ठोस चीजें मिलता ही नहीं हम सबको। और उतना ज्यादा अभ्यास करके हमने चिंतन मनन करने की अभ्यास डाला नहीं है, तो फिर इस ठंडा ब्रेन ठंडा हो जाता है, और माइंड को 2 घंटे 3 मिनट 4 मिनट के अंदर अंदर कोई ना कोई सामान मिलते रहना चाहिए। अगर बहुत लंबा समय तक अगर सामान नहीं दे तो वो ब्रेन ठंडा पड़ जाता है, मन भी सुस्त होकर के उसी में घुलमिल हो जाता है और भिरकुटी में चिपक जाएगा मन भी। तो फिर वो इसके लिए बीच बीच में आग फूकने वाला कोई ना कोई चाहिए हमको। तो फिर उसके बाद में हम सब क्या समझेंगे, क्योंकि हमें ये साक्षी दृष्टा बनाने के लिए आया है, साक्षी बनाएगा वो, क्योंकि ऐसी सारी चीजें जब आएगी तभी हम साक्षी दृष्टा का अभ्यास करके उस सारी चीजों को कैसे डिलीट करना होता है, कैसे उसको फिनिश करना होता है। उसके बाद में जो ये दया रहम क्षमा जो गुण का पूरा चैप्टर और शक्तियों का जो पूरा चैप्टर पढ़ाने के लिए आया है मुझे, ये सारे गुणों की कमी थी मेरे जीवन में। ऐसी हालत में भी 10 गुणा बड़ा रावण भी क्यों ना हो, उसके प्रति भी सुभावना रखने की क्षमता है। क्योंकि बाबा ने तो बोला है कि पत्थर का जवाब फूल से देना है, तो क्या पत्थर का जवाब फूल से दे सकते हैं किसी के लिए भी? अगर नहीं दे सकते हैं तो अंदर में बहुत बड़ा घाव है अंदर में, उसको मलम पट्टी करके रखा तो है लेकिन पूरा ठीक नहीं हुआ है, और जब तक ठीक नहीं होगा बाद में वो कैंसर का रूप भी ले सकता है। तो इसके लिए भी फिर हमें ये देखना होगा। तो उसके बाद में शो चेकिंग, और उसके बाद में चार ही सब्जेक्ट का, सारे चार ही सब्जेक्ट का ये थर्मामीटर है। मैं इस चार ही सब्जेक्ट में मैं कहाँ तक आगे निकला हूँ, कितने पानी में मैं डुबकी लगा रहा हूँ, है ना। मियाँ मिठू बन करके कहते हैं बहुत कुछ कर लिया है, लेकिन बाद में छोटी सी बातें आती है तो नाक में दम करके रख देता है, और फिर सोचते रहते हैं, और उस चीजों से निकलना इतना आसान नहीं होता है। इसीलिए हम क्या समझेंगे, ये सारे सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए, और ये थर्मामीटर है, मैं कहाँ तक परिपक्व बन गया हूँ। हाँ, तो मान मल्टीमीटर अल्टीमीटर जो भी मानी। तो ये सब चीजें हैं, तो ये हम सबके लिए कहाँ तक मैं इसमें परिपक्व बन गया हूँ, परिपक्वता का आधार मेरा क्या है। और फिर आगे हम सब ये मानेंगे कि सोमान मेरा कितना, सोमान की स्मृति कितनी है मेरे पास में। सोमान की याद बीच में नहीं होता है। बाबा ने बोला कि जब सोमान में रहोगे तो अभिमान स्वतः ही समाप्त हो जाएगा, अपमान खत्म हो जाएगा। तो अपमान क्यों आता है, क्योंकि हम सोमान में नहीं है। तो फिर आगे हम फीलिंग प्रूफ कितना बने, बीती से बीती करके फीलिंग प्रूफ, क्योंकि वो हम सबको दुखी करके रखता है और बार बार स्मृति में आते ही रहता है। तो कितनी देर के अंदर भूल पाए हमने उस चीज को, क्योंकि पहले वो घटना घंटों तक हफ्तों तक चलती थी, अभी आकर के घंटे में अथवा मिनट में सिमट रहा है, फिर भी उसको हमने कितनी जल्दी उसको निकाल सके, तो उसमें अपने को रिकवर कितना कर पाए, कितना पीरियड रहा हो हमारे मन के अंदर में, इसके ऊपर भी हम देखते हैं। और देखने से ये फायदा होगा कि इसी सिलसिले में बीच में शांतिवन ग्रुप आए थे तो जाना चलता रहा, तो बीच में ऊपर आना होता है तो गाड़ी टाइम पर मिलती नहीं, तो एक भाई ऊपर से नीचे से ऊपर आ रहे थे, गाड़ी खाली थी, तो इसका अभ्यास हुआ ट्रांसपोर्ट के आगे पीछे भी हम कर रहे थे। तो मैंने सोचा कि भाई कभी लेके तो जाता नहीं है, फिर भी एक बार एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं होगा या नहीं होगा। तो मैंने पूछा, भाई साहब आप ऊपर जा रहे हैं क्या? बोला कि नहीं ऊपर नहीं जा रहा हूँ। बोला फिर थोड़ी देर में दूसरी गाड़ी मिल गई, मैं उसी गाड़ी में आ गया, तब तो वो भाई पहले यहाँ पहुंचा हुआ था। तो मैंने सोचा कि ठीक है, मैंने एक्सपेरिमेंट तो कम से कम मेरा सफल हो गया, क्योंकि नहीं तो अपमान की फीलिंग होती थी, क्योंकि हम भी तो बाबा के बच्चे, गाड़ी खाली आ रही तो लाना तो जिम्मेवारी तो बनती है। नहीं, वो जो भी कारण है हमने अपने को एडजस्ट करके, तो फिर एक संकल्प भी नहीं आया दूसरी बारी कि मैं इसमें पास हो गया हूँ, ऐसा लगा मेरे को। तो इसलिए ये बीच बीच में जैसे कि पूरा धरनी तैयार करके एक्सपेरिमेंट ही करना पड़ता है, नहीं तो सबसे ज्यादा अपनों से और नदीक वालों से ये सब चीजें होती रहती है। तो फिर हम बाबा ने यह बोला है कि अब घर जाना है, क्योंकि यह स्मृति भी हम सबको अकेले आए थे और अकेले जाना है इस संसार में। कभी कभी ऐसी भी हालत में हमें जीना है कि कोई किसका नहीं है। इस स्थिति में अगर हम टिके रहेंगे, कभी कभी इस स्मृति को लाएंगे ना, तो एक सेकेंड में हम जैसे कि हल्के हो गए, इससे छुटकारा मिल गई है। ये तो पार्ट था एक आपस में मिलने का जुलने का। अब अगर इसी घड़ी और इसी वक्त मेरी प्राण अगर निकल जाए तो कौन किसका है, कोई किसका होगा, कोई नहीं होगा। और साथ में निकल गई, और न कोई उधर साथ देंगे ना इधर देंगे, जो कर्म हमने किए, जो संस्कार हमने बनाए, वही हमारे साथ देगा। तो इसीलिए इस सब चीजों के द्वारा हम चौकस रहते हैं, चौकन्ने रहते हैं, एक्टिव रहते हैं। तो फिर कुछ दुनिया में भी कुछ घटनाएं घटती है तो कहते हैं ना, सरकार रेड अलर्ट करता है, हाई अलर्ट करता है, तो हमें तो 24 घंटा इसमें सजग रहना है। बाबा ने तो हम सबको जैसे कि अच्छी स्थिति बना करके हम चल रहे हैं, कभी ना कभी अंदर से कुछ कमी कमजोरी होकर के हम फेल हो गए, तो उस समय भी हमको इंसल्ट के अपमान की फीलिंग होता है, अपने से भी होता है, पराये से तो होता ही है, लेकिन स्वयं से भी हो सकता वक्त होता है, दिल चिकित्सित हो जाती है आत्मा, इतना करने के बाद में भी हम हार खा गए, कभी शब्दों के द्वारा, कभी परिवार के बीच में कि 10 बार हमने संकल्प किया और अभी मैं दोबारा ऐसा शब्द नहीं बोलूंगा, ऐसा वचन मेरे मुख से नहीं निकलना चाहिए, मान के रखा है, लेकिन अचानक अंदर से किसी ने इतना ज्यादा जोर लगा दिया, मेरे बस की बात नहीं रही, संस्कार अंदर में सीधा अटैक करने के लिए आ गया। तो उस समय भी हम दुखी होते हैं और स्वयं को भी कभी कभी तो हार जाते हैं, तो कहते हैं अभी छोड़ो, कोई की भाई से पाई के मुख से ऐसा शब्द निकलते हुए देखा, इतने करने के बाद में भी इतनी परिस्थिति आ रही, इतनी समस्या आ रही है, अब तपस्या सब बंद करना पड़ेगा, ऐसे बोलते। मैंने बोला जब बीमारी होती है तो गोली तभी तो खाना होता है ना, बीमारी नहीं है तो गोली काय को, जब ऐसी परिस्थिति आएगी तो और ज्यादा करनी चाहिए, कम करना चाहिए या ज्यादा करनी चाहिए, डॉक्टर भी बोलते हैं एक गोली खा रहे तो 2 गोली खाओ, और उसको डोज बढ़ाओ। तो इस तरीके से हम सबको भी तैयार करना होता है, तो तैयार करनी पड़ेगी। इसीलिए आगे जा करके हमारे मन में, हमारे दिल में इस प्रकार की बातें न रह जाए कि जो अपमान अभिमान जो हमारे जीवन के हिस्सा न बन जाए। तो चेकिंग करने की अगर हमारे पास में मशीन नहीं होगा तो कहीं ना कहीं हर दिन ये सब बातें हुई है और हर दिन हमें इसके लिए चपेट में आना पड़ा है। छोटी सी चाहे किसी का डिपार्टमेंट छोटा है, किसी का डिपार्टमेंट बड़ा है, किसी का पद पोजीशन ऊंचा है, इसमें भी छोटी डिपार्टमेंट में छोटे तरीके से आते और बड़े डिपार्टमेंट उसी हिसाब से आते हैं, बड़े के बड़े हिसाब होते हैं। इसीलिए हम कहाँ तक इसकी मास्टरी बने और हमने मास्टरी की है, ये हमारे आगे के लिए सब कुछ भूल करके एक बाप दूसरा कोई इसी स्थिति में पहुंचने के लिए। तो डायमंड हॉल में कई बार देखा गया कि बड़े पोस्ट पोजीशन में और जोनल हेड है उनकी वहाँ कुर्सी नहीं मिलती है, सीट नहीं मिलती है, तो वहाँ सबसे ज्यादा अपमान की फीलिंग होती है और भी बातें बड़े तक पहुँचती है। और उस समय बाबा की याद नहीं आती, पूरे जितना घंटा हम वहाँ पर हैं कुछ न कुछ उल्टे पलटे संकल्प चलते रहते, कई सारे लोगों के तो मूड ऑफ होते देखा हमने, बहुत बड़ी समस्या हो गई थी। तो इसीलिए हम जहाँ भी जाते हैं, जिधर भी जाते हैं, कहाँ भी रहते हैं, ये सब चीजें हमारे इर्द गिर्द घूम रही है। तो जब तक हम, और एक दूसरी बात है कि ठीक है अभी हमने अपमान करना भी छोड़ दिया, अपमान के किसी को करते भी नहीं, होते भी नहीं, मैंने अपनी स्थिति को बना के रखा है, लेकिन अब वो पहला करके रखा तो वो कब डिलीट करेंगे? जो वातावरण में घूम रहा है, वायुमंडल में घूम रहा है, उसके लिए सकाश देने की जो सेवा बाबा बोलते हैं, जो हमने करके रखा है पहले से वातावरण में है, वही हमको बीच बीच में प्रेरित करती रहती है, अंदर में पुश करती रहती है, उसके लिए हम अब फिर से सकाश देने की सेवा जब नहीं करेंगे तब तक उसको खत्म किया नहीं जा सकता है, और कभी न कभी वो चीजें हमारे जीवन में फिर दोबारा आ सकता है। एक ऐसे भाई मिले थे कि इतना बहुत सारे नशाड़ी थे, ड्रग्स वगैरह खाते पीते थे और उसका पूरे गैंग था, और उस गैंग में वो भाई क्या कह रहे थे कि हमारे आगे कोई स्कूटर वाला क्या तो उसको पकड़ के धुलाई करते थे, और ट्रक वाला आगे निकल गया ट्रक का पीछा करके उसकी ऐसी पिटाई करते थे कि उसकी बुरी हालत कर देते थे उसकी, जैसे कि पूरे गैंग था उसका। तो वो भाई गैंग में आए तो कुछ समय इधर भी आके सेवा किया। इसीलिए हमें जब तक सकाश देने की सेवा नहीं करेंगे तब तक ये सारी चीजें डिलीट नहीं होगी, और उसको इसलिए इसके लिए भी हम, क्योंकि हर चीज के लिए काम आता है, वो चीज एक ही नहीं है, वो सारी चीजों के लिए काम आता है, सारी लाइफ के लिए काम आती है। इसलिए हम सब इसके जानकार हैं, इसलिए सोमान में रहेंगे तो अपमान स्वतः ही खत्म होगा। तो सारे दिन भर हम कितना अभ्यास करते हैं, कितना प्रयोग हुआ है, इसकी भी हम सारे दिन भर चेकिंग करते रहेंगे, और अपने जीवन में जो भी चीज की कमी है, कमजोरी है, जो भी चीजें हमारे जीवन में काम आता है उसको काम में लेना ही चाहिए। तो इसलिए आप सबके साथ में जो भी थोड़ा बहुत चिंतन किए थे आप सबके साथ शेयर किया, कहीं कमी कमजोरी रही है तो सरी कहते हुए ओम शांति।